अच्छा फिर फ़ाइन तल्ला कहा, अगर फिर अगर वो मर्द तलाक दे दे इस औरत को, अब कौन सी तलाक है? अब ये रजई तो हो गई, अब रजई तो नहीं है ना दोबारा, अब क्या है? लेकिन इन चीज़ों को हमें सीरियसली सब को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। हमें ये देखना है कि ये कितनी बड़ी बात आ गई ना कि ये अल्लाह की हदें हैं, ठीक है? तो वो इनको समझना ज़रूरी है, ये मामूली बातें नहीं। क्योंकि आप आज की आयात में देखेंगे सबसे ज़्यादा इन अहकामात को तोड़ा जाता है, जहाँ पे ये तलाक का मामला आता है सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को तोड़ा जाता है। यानी ये कभी कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता कि अल्लाह ताला ने हुक्म क्या दिया, दे डोंट केयर। फिर अगर फाइनल तलाक देनी ना, थर्ड वन, अब ये आखिरी है, पहली तो तलाकों का जिक्र आ चुका है, अब क्या होगा इसके? देखें, मैंने आपको क्या बताया था अभी कि रजई तलाक के सेम रूल्स हैं। सेम रूल्स क्या हैं? रुजू कर सकते हैं, इद्दत उसी घर के अंदर होगी, ठीक है? अच्छा, अब अगर तीसरी तलाक आदमी दे देता है तो क्या होगा? अब उसकी रूलिंग्स डिफरेंट हैं। फला तहलू, तो नहीं हलाल लहू लिए उसके मिम बाद, इसके बाद, नाउ दैट्स फाइनल, अब इसको इतनी भी अकल नहीं आई, दो दफ़ा तलाक दे दी, रुजू कर लिया इसने, लेकिन अब ज़िंदगी में फिर अगर इसने इतनी जुर्रत कर ली कि एक फाइनल तलाक भी दे दी, तो दैट्स इट, अब हलाल नहीं रहेगी उसके लिए इसके बाद। कौन नहीं रहेगी? वो औरत। हत्ता, मगर हाँ एक एक्सेप्शन है, हत्ता यहाँ तक के तन की हा ज़ौजन ग़ैरहु, वो औरत निकाह कर ले शोहर से इसके अलावा, इस आदमी के सिवा किसी और से निकाह करें। अच्छा ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ही सुन ले। यहाँ पे क्या होता है इन मुल्कों में, एक दिन किसी को नोटिस आ जाता है कि अल्लाह ताला माफ़ करे कि आपके हस्बैंड ने डिवोर्स फाइल कर दी है। अब क्या है? अब वो वन डिवोर्स है कि टू डिवोर्स है कि थ्री थर्ड डिवोर्स है, क्या है वो? ज़ाहिर है उसने एक दफ़ा लिख दिया है कि मैंने, या तीन दफ़ा लिख दिया कि मैंने, तो क्या होगी? एक ही काउंट होगी, तो एक डिवोर्स उसने फाइल कर दी। जब वो डिवोर्स फाइल करता है, उसके बाद मिसाल के तौर पे दो साल मुकदमा चलता रहता है। यहाँ पे आपको पता है ना, कोर्ट्स में बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए ये होता रहता है, चलता रहता है। अब उसकी डिवोर्स कब हुई? जिस दिन उस आदमी ने लिख के उसमें दिया था कोर्ट में कि मैं इसको डिवोर्स देता हूँ। अब वकील जरा करते रहेंगे, आपस में वो करते रहेंगे, कोर्ट कहेगी तुम लोग बैठो और तुम लोग इसको अपनी आपस के अंदर कुछ सुलह सफाई करो, ये करो वो करो, वो यहाँ का लॉ है। इस्लामिकली तलाक हो गई जिस दिन उसने लिख दिया कि मैंने इसको तलाक दी है। अब कोर्ट माने ना माने, उसको ना माने, ये मुल्क ना माने, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसने अगर लिख दिया, मैंने अभी आपको क्या बताया कि किनायतन भी कह दिया ना अगर, तो किनाया क्या कि अगर अपनी अपनी तलाक का वर्ड नहीं बोलो, मैं इसको डिवोर्स करता हूँ इंग्लिश में लिख दिया उसने, उसका मकसद यही है कि मैंने इसको तलाक दे दी, तो तलाक हो गई, समझे ना? अब ये ऐसे नहीं है कि वो दो साल के बाद तलाक होगी, चार साल के बाद तलाक होगी, तलाक उसी दिन हो गई जिस दिन उसने लिख दिया कि मैंने इसको तलाक दे दी, उस दिन से उसकी इद्दत शुरू हो गई। अब उसकी इद्दत तीन पीरियड्स के बाद फिर ख़त्म होगी। अब इद्दत जब ख़त्म होगी तो अब वो इसकी बीवी नहीं है। अब मिसाल के तौर पे एक साल के बाद अदालत ने इन दोनों को काउंसलिंग के लिए भेजा, इसके लिए भेजा, अब एक साल के बाद उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है, हम दोबारा मिल लेते हैं, हमें नहीं डिवोर्स चाहिए, तो अब क्या करना पड़ेगा? वो दोबारा रहना शुरू हो जाएंगे ऐसे? नहीं, उनको निकाह करना पड़ेगा, इसलिए कि इस्लामिकली तो उनकी डिवोर्स होगी। इस्लाम का या अमरीका का कानून थोड़ी जानता है, यहाँ के अपने कानून है, मगर हमें इस्लाम के कानून के मुताबिक चलना है। अब एक साल के बाद अगर वो दोबारा मिलना चाहेंगे तो उनको निकाह करना पड़ेगा। हमें इस्लाम के कानून तो पता नहीं है, यहाँ के कानून बहुत हम फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि हमारे अपने कानून क्या हैं। तो उस वक्त क्या होगी? एक तलाक हो गई, क्योंकि उसने तलाक फाइल कर दी, इसका मतलब ही इज गिवन द डिवोर्स। अब कोई दुनिया का कानून उसको माने ना माने या कि अदालत माने ना माने, औरत माने ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उस आदमी ने कह दिया मैंने तलाक दे दिया तो तलाक इज डन, इस्लामिकली तलाक हो गई। अब वो तीन हैज तक उसकी इद्दत रहेगी उसके बाद। और मैंने आपको उस इद्दत में और बेवा की इद्दत में फ़र्क भी बताया था लास्ट टाइम। तो उस इद्दत के अंदर फिर वो रजू का हक रखता है, अगर उसने नहीं रजू किया तो उसके बाद फिर वो औरत कहीं भी और निकाह भी कर सकती है इस्लामिकली। लेकिन अगर तीन तलाकें हो गई, एक भी हो गई, दो भी हो गई, तीन भी हो गई, अब नहीं है हलाल ये औरत इसके ऊपर, यानी अब फिर अगर हलाल ही नहीं तो वो क्या उस घर में रहेगी? नहीं। अब ये कौन सी तलाक है? तलाक बाइन। अब वो औरत इस घर में नहीं रह सकती, शी हैज टू मूव आउट। अब क्या है, वो इद्दत गुजारेगी, इद्दत उसकी सेम ही है, तीन हैज फिर, लेकिन इसमें वो रुजू नहीं कर सकता। अब उसके बाद क्या होगा, अब वो औरत हत्ता तनखे हा जऊजन गई रहू, हत्ता के वो किसी और से निकाह करे, वो कोई और कोई भी हो सकता है मगर इस आदमी से नहीं कर सकती। इस आदमी से कब कर सकती है? अगर वो जब किसी और से निकाह करती है, वो दूसरा आदमी उसको तलाक दे देता है या वो फौत हो जाता है, तो अब ये इस पहले हस्बैंड जो एक्स हस्बैंड था उसका, अब वो इससे कर सकती है। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि होता क्या है कि आदमी इस तरह से तीन तलाकें दे देते हैं और फिर हमारे लॉज में वो कह देते हैं अच्छा हम तो इस फिक को फॉलो करते हैं, तीन है तो तीन ही हो गई, अब क्या करें, अब मुसीबत पड़ गई। अब आदमी मजबूर करता है औरत को, फलां मेरे दोस्त के साथ शादी कर लो और उसके साथ फिर जाहिर है कि रहो तुम। और इसमें ये भी है कि जब तक दूसरा हस्बैंड उससे लुत्फ़अंदोज़ ना हो जाए, यानी दूसरा हस्बैंड भी उसके साथ ताल्लुकात ना कायम कर ले और उसके बाद उसको डिवोर्स दे, तब जाके ये पहला हस्बैंड शादी कर सकता है। अगर सिर्फ दूसरी जगह निकाह किया और कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं हुआ तो फिर नहीं, उसके साथ भी रिलेशनशिप होगा। तो मुझे सिर्फ इतना बताएं, अल्लाह ताला तो सबसे ज़्यादा हया वाले हैं, अल्लाह ताला तो, यानी आप इससे अंदाज़ा करें, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशाय, अल्लाह ताला फहाशी का हुक्म नहीं देता। आप खुद सोचें क्या ऐसी बेशर्मी के काम का अल्लाह ताला हुक्म दे सकता है कि एक औरत है उस बेचारी को पहले इतना बड़ा ये सदमा कि उसके हस्बैंड ने उसको तलाक दे दी, उसको घर से बाहर खड़ा कर दिया, फिर उसके बाद उसके लिए कोई और अरेंजमेंट किया कि जो है ना वो इसके साथ रात गुजारे और फिर अगले दिन भी इसको ये तलाक दे देगा, उसको थोड़े से पैसे दे दिए या दोस्त है या कोई भी और एक स्ट्रेंजर को कर लिया हायर कि तुम मेरी बीवी से जो एक्स वाइफ है उससे निकाह करो, उसके बाद लेकिन तुम एग्रीमेंट करो कि तुम नेक्स्ट डे तलाक दोगे। कितनी बड़ी अजियत औरत के लिए, हाँ आदमी के लिए ठीक है उसको एक लगता है, लेकिन औरत के लिए सोचें कितनी बड़ी अजियत है। अगर तलाक उसके हस्बैंड ने दी थी, अब सजा इसको भुगतनी पड़े। इस्लाम ऐसा अंधा कानून नहीं रखता, ये लोगों ने आजकल बनाई हुई ये चीजें। इस्लाम तो क्या कहता है कि नहीं, अब ये आदमी इसके काबिल ही नहीं है, ठीक है तुम जाओ अब अपना रास्ता लो। अब क्या है, अब ये औरत तुम जैसे एक नॉर्मल होता है कि कहीं और भी शादी करो, फिर उसके बाद ज़िंदगी में कभी होगा कि कहीं ये आदमी फौत हो जाता है या डिवोर्स कर देता है, ठीक है फिर दोनों अगर करना चाहें दोबारा कर लें, लेकिन इस्लाम ये थोड़ी कहता है कि फ़िक्स कर लो, पहले ही बातें कर लो, एग्रीमेंट कर लो और उसके बाद फिर उसके बाद अगले दिन, ताकि ये हलाल हो जाए इसके लिए। इसी चीज़ को कहते हैं हलाला, कि उसको हलाल करने के लिए ये काम किया जाए। इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाला निकालने वाले को कराए का सांड कहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फरमाया हलाला करने वाला और करवाने वाला दोनों लानत ज़दा हैं, दोनों के पर लानत है। अब आप देख लें, अब ये हलाल नहीं है, ये काम सही नहीं है, इसीलिए इसकी सजा भी दी जाती थी। हज़रत उमर के जो कानून था उसके अंदर हलाला को करने वाले को संसार करने की सजा थी। तो देखिए उन्होंने पहले ये कानून बनाया ना कि तीन तलाकों को तीन शुमार किया जाए ताकि तुम लोगों को पता चले और तुम लोग ये हरकतें ना करो, तीन तीन दफा ना को। और उन्होंने दूसरा कानून ये बनाया, जिसने हलाला कराया ना उसके बाद ठीक है तुम जाओ फिर आउट, तो अगर तुमने हलाला कराने की कोशिश की इसके बाद तो संसार करने की सजा है। अब उसके बाद बताएं कोई जुर्रत करेगा तीन दफा बोलने की, इन लोगों को फिक्स करने के लिए ताकि लोग ये हरकतें ना करें। तो इसलिए इस्लाम ने तो इस तरह का वो करा है और हमारे यहाँ उलट हो गया। वो वाली बात हो गई ना जैसे वो सब्त वाले थे, वो जो मछलियां पकड़ने वाले थे बनी इसराइल, कैसे उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को किस तरह से ही बदल दिया। यानी हम तो नहीं सैटरडे को पकड़ते, हम तो अगले दिन पकड़ते हैं, कैसी अल्लाह ताला ने उनको सजा दी थी। तो ये भी इसी तरह कर रहे हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि हाँ ठीक है किसी और जगह शादी कर, तो वो कहते हैं हाँ ठीक है कर ली है ना शादी, अब हमारे लिए हलाल हो गए। तो हीला साजी की है ना, हीला साजी पे कितनी बड़ी सजा उनको मिली। और आज ये देखो कैसी इन्होंने हीला साजी के कर लिया है कि कई लोग बाकायदा पैसे लेके ये काम करते हैं हलाले के, वो हलाले के कराने के नाम से ही मशहूर हैं कि ये इनका काम ही यही है। और उसके अंदर क्या होता है, अक्सर तो लड़की के वालदैन को भी नहीं पता होता और चुप करके आदमी और औरत हलाला कराने के लिए चल पड़ते हैं, जो करके कराया ये काम खामोशी से, फिर अगले दिन उसको घर ले आया। और औरत बेचारी कहती है कि मैं बच्चों की खातिर क्या करूं, मजबूर हूं। अल्लाह ताला ने तो उसकी राइट्स को प्रोटेक्ट किया, नहीं जिसने ये तमाशा बनाया हुआ ना फिर ठीक है अब इसकी जिंदगी से ये आउट है, ठीक है अब ये जाके कहीं और बसे, और कभी करनी होगी तो फिर इन तल्ला कहा, फिर अगर वो तलाक दे दे यानी दूसरा हस्बैंड अगर तलाक दे देता है फला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजा इन ज़न्ना अन युकीमा हुदूदल्लाह, फिर कोई गुनाह नहीं है, कोई हरज नहीं है कि अगर दोनों रजू कर लें। रजू करने का मतलब क्या है, दोबारा शादी कर लें, ये पहले हस्बैंड के साथ दोबारा शादी कर सकती है, लेकिन फिर शर्त एक लगा दी, इन ज़न्ना, अगर वो दोनों समझते हैं कि वो अब अल्लाह की हदों को कायम रख सकते हैं, अब खुशउसलूबी से निभा कर सकते हैं, अब ये नहीं वही तमाशा दोबारा शुरू कर दे। तिलका हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यालमून, देख रहे हैं आप कितनी दफा ये आ रहा है कि ये अल्लाह की हदें हैं। ये अल्लाह का हदें का मतलब क्या है कि अल्लाह के कवानीन हैं, ये उसके लॉज हैं, इनको इनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। लेकिन हम तो खैर ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे ये कानून यानी कंट्रीज के अंदर यानी अदालतों के अंदर नहीं है राइज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इन कवानीन को जानते तक नहीं है, हमें पता नहीं है, हमें इनकी संगीनी का अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना ज़रूरी है कि ये अल्लाह के लॉज को इनको फॉलो किया जाए। ये कुरान में ऐसे ही दिए हुए हैं क्या, सिर्फ पढ़ने के लिए कि क्लासों में पढ़ा दिए जाएं, लोग कोर्स कर लें इसलिए, या ये इम्प्लीमेंट करने के लिए? ये ज़िंदगियों में इनको लाने के लिए दिया गया ताकि लोग ये जो मैरिड लाइफ है और ये तो जो तलाक के कवानीन है, जो तलाक है, इसको एक मजाक ना बना लें। तो ये अल्लाह की हदूद है, युबय्यिनुहा, अल्लाह बयान करता है इनको किसके लिए, लिक़ौमिन यालमून, उस कौम के लिए जो इल्म रखती हो, जो इल्म रखती हो उसके लिए, उनको तो पहले ही इल्म है। असल में एक बात जहन में रखें, यहाँ पर यालमून का तर्जुमा है जो जानते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है जो इल्म के तालिब हैं, जो इल्म हासिल करना चाहते हैं। इसलिए कि बाज़ दफ़ा ना फेल जो होता है वो तलबे फेल के माने में इस्तेमाल किया जाता है, समझ आ गई बात, फेल है ये, इसका बिल्कुल ठीक है तर्जुमा जो इल्म रखते हैं, लेकिन वो बाज़ दफ़ा फेल को तलब करने के लिए भी होता है, यानी इल्म हासिल करना चाहते हैं, इल्म तलब करना चाहते हैं उनके लिए। इसलिए कि जो जानना ही नहीं चाहते उनके साथ तो आप भैंस के आगे बीन बजाना वाली बात है या दीवारों से टकरे मारने वाली बात है कि आप उनके आगे कितना भी बताते रहना उनको नहीं कोई असर होना। ये जो चाहते हैं जानना, जो चाहते हैं कि इल्म ले, उनके लिए अल्लाह ने देखो साफ साफ खोल खोल के बता दिया क्या मुश्किल है इसके अंदर जो नहीं अमल हो सकता। वाइदा तल्लक तुम उन्निसा फबलग नाजल हन्ना, फिर जब तुम तलाक दे दो औरतों को, अब यहाँ पे दोबारा रजई तलाक की बात आई, जब तुम तलाक दे दो औरतों को फबलग नाजल हन्ना, फिर वो पहुंच जाए अपनी मुद्दत को, तो फिर क्या है फअमसिकु हन्ना बिमारूफिन, तो रोक लो इनको भले तरीके के साथ, या क्या करो औसरिहु हन्ना बिमारूफ, या फिर रुख्सत कर दो उनको भले तरीके के साथ, अब यहाँ पे क्या कहा गया, दोनों तरीके क्या बताए गए, भले तरीके के साथ, अच्छे तरीके के साथ। देखिए सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमाया वलकद करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज्जत अता फरमाई है, ठीक है। यही चीज़ हमें इसकी तफसीर मिलती है तलाक के अहकामात में कि तलाक की नौबत कब आती है, जब दो लोगों में इतना झगड़ा होता है, इख्तलाफात होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, झूठे इल्ज़ाम भी लगा देते हैं, दूसरे को बदनाम करने की कोशिशें करते हैं, ऐसी सूरत में बड़े बड़े परहेजगार लोगों के हाथों से भी गलत काम हो जाते हैं, क्योंकि इंसान जज्बात में इतना आ जाता है ना, हर फरीक ये कहता है कि मैं ही ठीक हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा मजलूम हूँ, और इसकी वजह से बाज़ दफ़ा गलत बयानी हो जाती है, बाज़ दफ़ा नाजायज़ बातें मुंह से निकल जाती हैं, ठीक है। तो मियाँ बीवी के ताल्लुकात जो होते हैं ना, बड़ी नाजुक, बड़े नाजुक होते हैं, बड़े हसास होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, एक की ज़ुबान से भी एक बात निकली हुई भी ना, मामूली सी बात दूसरे के लिए बहुत बड़ी बात बन सकती है, ज़िल्लत बन सकती है, रुसवाई बन सकती है, उसके फ्यूचर को ख़राब कर सकती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने मर्दों को हिदायत किया बार बार, देखें ये मर्द को कहा जा रहा है फअमसिकुहुन्ना बिमारूफिहिम औ सर्रिहूहुन्ना बिमारूफ, और अगर तुमने उनको रोकना ही है तो वला तमसिकुहुन्ना दिरारन लितअतदु, अगर तुमने रोकना ही है उनको तो देखो इस वजह से ना रोकना ताकि तुम उनको तकलीफ दो, उनके साथ ज्यादती करो, इसलिए ना रोकना। देखो अगर रोकना है उनको, अपने पास रखना है ना तुमने, तो फिर ठीक तरह से उनको बसाओ, उनको इज्जत दो शराफत के साथ, इसको वो उसको ये एहसास ना हो कि मुझे जलील करने के लिए इसने दोबारा बसा लिया, या मेरे बदले चुकाने के लिए कि पिछले के मैं इसको जाने भी नहीं दूंगा, रहती रहे यहाँ पे इसी तरह। बाज़ औरतों के साथ ये हाल हो जाता है कि वो लटकी रहती हैं बेचारियाँ, उनको तलाक नहीं देते, जिद में आके नहीं देनी, पड़े ही रहे यहाँ पे, खुद जाके दूसरी शादी कर लेते हैं। तो अगर तुमने अलग करने का फैसला कर ही लिया, अगर तुमने सही तरह नहीं ना बसानी तो अलग कर दो, और इसके फिर अलग वो भी क्या कहा गया कि मारूफ तरीके के साथ अलग भी करना, तो मारूफ यानी ये नहीं है अब उसके बाद उसके खिलाफ शिकायतों का दफ्तर खोल दो, इल्ज़ामात का दफ्तर खोल दो, उसकी कमजोरियों उसकी खामियों की तशहीर करो ताकि आइंदा कभी भी उसको कोई दूसरी जगह शादी हो ही ना सके, नहीं, शरीफाना तरीके से। अल्लाहु अकबर, देखें इस्लाम ने कितने हमें प्यारे असूल बताए। आप मुझे बताएं, औरतें जो कहती हैं कि हमें तो कोई राइट्स ही नहीं है, हमें तो इस्लाम कुछ देता ही नहीं, मुझे अब बताएं इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो औरत की अगर गलतियां भी हैं ना, मत उछालो, अच्छे तरीके, जाहिर है ये तो प्यार मोहब्बत से तो कोई जुदा नहीं हो रहा होता ना, वो सोचे ना, वो ज़रूर कोई ना कोई आपस के अंदर इतने हालात ख़राब हो जाते हैं, इतने ज़्यादा एक दूसरे के लिए दिल के अंदर रंजिशें, दिल के अंदर कदूरतें आ जाती हैं, इतनी नफरत आ जाती है कि बिल्कुल अलग होने का फ़ैसला करते हैं, वो तो एक्सट्रीम ही हो जाता है ना जब तलाक तक नौबत पहुँचती है। उस वक़्त भी कहा गया नहीं, मारूफ तरीके से मर्द को इख्तियार दिया है, जब वो महसूस करे कि बीवी के साथ वो नहीं रह सकता तो बस अच्छी तरह से इसको रुखसत कर दो, ठीक है। तो इसमें सारे में आपको कैसा एक माशरा नजर आ रहा है, कैसा माशरा नजर आ रहा है, हार्मनी कितनी है ना इसमें, कि जिसके अंदर अगर इद्दत में औरत घर में भी रह रही है तो ऐसा ना हो कि उसको सताना शुरू कर दे, रजई तलाक है, अगर घर में रह रही है तो ठीक तरह रहती रहे, और अरबों में होता है, आज भी होता है, वो इद्दत घर में गुजारती हैं, इद्दत में रुजू किया तो किया, नहीं तो चली गई सामान उठा के अपना। तो हमारे यहाँ तो ये कभी सोच ही नहीं सकते कि तलाक दी हुई है, इद्दत गुजार रही है घर में, ये तो टॉर्चर बन जाएगा उसके लिए। और उसके बाद देखें ये एंड तक मर्द को अहकाम है, वमई अफ़ाल ज़ालिका, जो ऐसा करेगा कैसा, कि उसको तकलीफ़ देने के लिए रोक ले, उसको साथ ज़्यादतियाँ करने के लिए रोक ले, क्योंकि ये उसके पास कैद है ना, तलाक क्या है आज़ादी, ये उसको उसके पास कैद हुई भी है, कहीं नहीं जा सकती, अब उसको रोक तो लिया है, अब उसके ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, तो ये बंदा उस पर नहीं जुल्म ढा रहा, फ़कत ज़लम नफ़सहू, उसने जुल्म किया अपने नफ्स पर, उसने अपने आप पर जुल्म किया, क्योंकि अल्लाह की हदों को क्रॉस किया ना, अल्लाह के कानून को तोड़ा है, तो अब आप सोच लें कि वो अल्लाह के गज़ब में आ गया, وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، سن لو اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ. مذاق کیسے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے ان کا مذاق؟ ہاں کہ جب ہم نے چاہا اللہ کے کوئی قانون کو پکڑ کے امپلیمنٹ کر لیا، جب چاہا کسی کو توڑ دیا، جب اب چاہا اپنی مرضی کر لی، جو جی چاہا کرتے پھر رہے ہیں، خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن کچھ پتہ ہی نہیں. مذاق مت بناؤ، یا پھر آپ کو پتہ بھی ہے لیکن ہم نے نہیں کرنا. ہاں رکھیں گے اس کو، بسائیں گے بھی اور ساتھ اس کو اذیت بھی دیں گے، بدلے چکائیں گے، پچھلے اس نے بھی تو ایسے کیا تھا نا. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر. اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تو بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن کس نعمت کا ذکر ہے؟ اسلام. اللہ نے تمہیں یہ اسلام کی نعمت دی، اتنے پیارے قوانین دیے. دیز آر گولڈن رولز آف فیملی لائف. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو کس چیز کو جو نازل کیا اللہ نے تم پر کتاب میں سے اور حکمت سے میں سے، یعنی يَعِظُكُم بِهِ، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اس کتاب کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا ہے. یعنی اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے میرج کاؤنسلنگ کی ہے، اور حکمت یعنی اللہ نے حکمتیں بھی بتائی، اور حکمت کا دوسرا معنی ہے سنت. ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری کاؤنسلنگ کر رہا ہے، تمہیں واز کرتا ہے، اللہ واز کر رہا ہے تمہیں. سوچے ہم، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے اور ہم کہیں گے ہمیں اللہ کی نصیحت کی کوئی پرواہ ہی نہیں، ہمیں نہیں یہ چاہیے یہ والے جو قوانین ہیں، ہم اپنی مرضی چلائیں گے، اب مجھے یہاں کے قانون میں زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہے تو میں یہ کروں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت کے ذریعے تمہیں نصیحت کی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. دیکھ لیں اب طلاق کا بھی معاملہ آیا تو اللہ سے ڈرو. پورے قرآن کا اصل میسج ہی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو. تقویٰ تقویٰ تقویٰ. زندگی میں انسان اسی وقت سیدھا رہ سکتا ہے جب وہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، کہ اللہ کا تقویٰ اس کے اندر ایسا ہو کہ اس کو مجبور کر دے کہ میں حد میں رہوں، لمٹس کراس نہ کرنے دے. انسان آدمی سوچتا ہے اس عورت کے پیچھے کون آئے گا، اس کا آگے پیچھے کون ہے، اس کو میں جس طرح مرضی میں اب دیکھنا اس کا حال کیا کرتا ہوں، تو کوئی بھی نہیں آئے گا اس کے پیچھے، مگر اللہ اس کے پیچھے ہے. اللہ کا خوف رکھو، سیدھے چلو. وَعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے. جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے. آپ باہر جا کے لوگوں کو کنوینس کر سکتے ہیں، آپ باہر جا کے اپنے لیے گواہیاں کھڑی کر سکتے ہیں، آپ باہر جا کے بڑی بڑی دلیلیں دے سکتے ہیں، بڑی تقریریں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وہ خود جانتا ہے، وہ خود باخبر ہے. یہ کہہ کے انسان کو خوف دلایا گیا، اللہ سے ڈر جاؤ، پھر اچھا سلوک کرو عورتوں کے ساتھ، ان احکامات کو پورے کرو، خرابیاں مت پیدا کرو، اللہ کی آیتوں کا مذاق مت بناؤ. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسے سیدھے چلو. اللہ اکبر. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور بس جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب یہ بھی کون سی طلاق ہے؟ رجعی طلاق. آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اس میں رجعی طلاق، یہاں پہ پھر اس کے اوپر اس کی بات آ رہی. جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فبلغنا اجلہن، پھر وہ پہنچے اپنی مدت کو، پھر یعنی عدت ان کی پوری ہو گئی. فلا تعدلوہن ان ینکحن ازواجہن، تو نہ تم روکو ان کو کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے، اپنے ایکس ہسبینڈ سے، اگر اس کے بعد نکاح کرنا چاہیں. رجعی طلاق کے بعد تو کر سکتے ہیں نا، تو اگر رجعی طلاق میں عدت ختم ہو گئی ہے، طلاق اس نے دے دی، عدت ختم ہو گئی، اب اس کا رشتہ کہیں ڈھونڈنے لگے، تو پتہ ہوتا کیا ہے، عدت کے اندر اندر تو لوگوں کو کم ہی عقل آتی ہے، ٹھیک ہے. جب عدت گزر جاتی ہے، 6-8 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، اب کیا ہے، اب دونوں کو زندگی کے نا سرد گرم حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر انسان ذرا سوچتا ہے ٹھنڈے دل سے کہ بات تو اتنی بڑی نہیں تھی جتنی بڑی بن گئی، جتنا بڑا میں نے قدم اٹھا لیا. اگر بچے ہوں اور بچے اگر باپ نے لے لیے ہوں، تو پھر بچوں کو سنبھالنا اس کے لیے ایک بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. वो अपनी फैमिली से भी अगर हेल्प लेता है तो कौन कितने दिन किसके बच्चे संभालेगा। अगर और औरत लेकर आता है तो कहेगा पता नहीं मेरे बच्चों को कैसा रखेगी कैसा नहीं रखेगी। अगर बच्चे माँ के पास हों तो बच्चे याद आते हैं बाप को। इसी तरह औरत पे देखें, औरत पे माली कितना प्रेशर आ जाता है, फाइनेंशियल प्रेशर कितना आ जाता है। पहले घर आराम से चल रहा था, आराम से घर बैठी भी थी, अब क्या करे, बच्चों को देखे, बाहर जॉब करे, क्या क्या करे। फिर जो प्रोटेक्शन उसको हस्बैंड की वजह से मिली हुई थी वो एकदम उठ गई, हर एक की नजरें उसके ऊपर होने लगी, किधर जाती किधर आती क्या करती है, लोग उंगलियां उठाने लगते हैं छोटी छोटी बात पे। तो फिर अब उसको एहसास होने लगता है कि ये क्या हो गया सब कुछ। अब इंसान पछताता है, अब सोचता है कि अब ये तो बड़ी नेमत थी साथ रहना। अब क्या होता है, दोनों के पास चांस तो है कि दोबारा निकाह कर सकते हैं, अब दोनों रابطہ करते हैं। जब आदमी रابطہ करता है वो औरत भी रेडी होती है, अब थोड़े बहुत भूल भी जाता है बंदे को। जब उस वक्त लड़ाई हुई थी तो बहुत गुस्सा था, फिर गुस्सा अब ठंडा हो गया। तो अब औरत और आदमी तो मिलना चाहते हैं, अब घर वाले क्या कहते हैं, खबरदार जो ऐसी आदमी के साथ तुमने दोबारा किया, इसने तुम्हें क्या दिया, इसने तुम्हारे साथ ये एक दफा हो नहीं चुकी कि अब तुम दोबारा उसके पास ही चल पड़ी हो, है ना। अब वो इतना ज्यादा इसकी मुखालफत करते हैं, बाज दफा तो लड़की को ये तक कहा जाता है कि इसके पास अगर दोबारा तुम गई ना उसके बाद हमारे साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, फिर हमारे पास वापस ना आना, हमारे पास ना शिकायतें लेकर आना कि अब ये करता है ये करता है, आज तक उसने को सीधा काम नहीं किया, अब जो है ना फिर मांगने आ गया रिश्ता। तो अब तो नहीं, हमने पहली दफा ठीक है गलती कर दी थी, अब नहीं हमने ये रिश्ता देना, ठीक है। तो लोग अकड़ जाते हैं, नहीं मानते, कहीं और कर देंगे, हमने अपनी बेटी को बिठाए छोड़ेंगे, अब इसके साथ नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अगर वो दोनों करना चाहते हैं, इदा तरा दउ बैनहुम बिल मारूफ, जब वो बाहम रजामंद हो जाएं आपस में मुनासिब तरीके से, वो कहें कि हम अब बस जिंदगी दोबारा गुजारना चाहते हैं, तो फिर तुम उनको मत रोको। आप नहीं रोक सकते, घर वालों को नहीं ये करना चाहिए कि इसमें आड़े आए, ठीक है। इसके अंदर ये भी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि फला तादुलू हुन्ना अय्यन कहना अजवाजा होना, तो तुम ना रोको कि वो निकाह करें अपने शौहरों से, यानी किसी और आदमी से निकाह करने लगी हैं, तो जो पिछला एक्स हस्बैंड है ना वो ही आड़े आ जाता है कि अब मैंने इसकी शादी कहीं और नहीं होने देनी, अब ये मेरे साथ नहीं बसी थी ना तो कहीं और भी नहीं बसेगी, अब वो एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। तो इसलिए उनको भी कहा गया कि वो भी ऐसा ना करें, मगर ज्यादा इसका माना यही बनता है कि जो घर वाले हैं ना वो पिछले हस्बैंड के साथ करने के लिए मना ना करें। इसके बारे में सही बुखारी में इस आयत की तफसीर में बयान किया गया कि हजरत माकल बिन यसार थे रज़ी अल्लाह अन्हु, तो वो फरमाते हैं कि मेरी बहन का मंगेतर मेरे पास आता था, मैंने निकाह कर दिया यानी शादी कर दी, उसने कुछ दिनों बाद तलाक दे दी, फिर इद्दत गुजरने के बाद, इद्दत गुजर गई है ना अब, फिर उसके बाद निकाह का प्रपोजल भेज दिया, तो कहते मैंने इनकार कर दिया, और बल्कि इन्होंने कसम खा ली थी, इन्होंने कसम खा ली थी कि मैं इसके साथ निकाह नहीं करूंगा अपनी बहन का। तो कहते हैं ये आयत उतरी जिसे सुन के उन्होंने बावजूद ये कि कसम खा रखी थी उन्होंने कसम का कफारा दे दिया और अपनी बहन का निकाह उसके साथ दोबारा कर दिया। देखिए अब ये आप इससे कितने सारे हमें सबक मिलते हैं ना, कि देखें एक तो हमने पहले पढ़ा था ना कि अपनी कसमों को नेकी के काम से रुकने के लिए आड़ ना बना लो, रुकावट ना बना लो। तो देखें एक नेकी का काम जब उन्होंने देखा कि आयत उतरी है तो ये नहीं कहा मैंने तो अब कसम खा ली अल्लाह की तो मैं तो नहीं अब ये काम करूंगा, मैं तो अपनी बहन का यहाँ पे रिश्ता नहीं अब दोबारा करूंगा, तो अब कसम उन्होंने उसका तोड़ दिया, उसका कफारा दे दिया। दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि जब उनके सामने आयत आई तो उन्होंने फौरन मान गए। अल्लाह ताला ने फरमाया ना फला तादुलुहुन्ना, तुम मत मना करो उनको, मत रोको उनको। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम तो आयत आई हो तो आई हो, मैं तो नहीं अपनी बहन का करूंगा, हमारे सामने तो कोई आयत पढ़ भी लेना तो फिर भी नहीं हम मानते, नहीं मेरे हालात तो इस तरह है, नहीं वो ठीक है अलग बातें हैं लेकिन मैं तो नहीं ये मानूंगी। वो कैसे लोग थे जो फौरन मान जाया करते थे। और ये तो अभी तलाक हो चुकी है, तो फिर ये बात है, हमारे यहाँ तो तलाक अभी हुई भी नहीं होती, तो मैके वाले कहते हैं कि अब कभी दोबारा वहां जाना ही नहीं है, बस पहले ही रोक लेते हैं, है ना। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, तुम नहीं रुकावट बनोगे, अगर वो दोनों मिलना चाहते हैं आपस में तो तुम क्यों रुकावट बन रहे हो। बाज दफा औरतें नाराज होके चली जाएं तो मैके वाले वापस नहीं जाने देते कि छोड़ दो तुम इसको, बस रहने दो, अब दोबारा जाना ही नहीं। अगर औरत रजामंद है और करना चाहती उसी शौहर के साथ जो पहला शौहर था, उसी के पास जाके बसना चाहती है, तो किसी को भी नहीं ये राइट कि वो आड़ बने। इसी तरह अगर वैसे भी कोई करना चाहे तलाक के अलावा भी, जब बाहम दो लोग रजामंद हों आपस में करने के, और कोई ऐसी वजह भी ना हो जो कि कोई ऐसी जेन्युइन रीज़न भी ना हो, सिर्फ हम अपनी अना का मसला बना के उसके बीच में खड़े हो जाए कि नहीं हमने नहीं करने देना यहाँ पे, जबकि तरादो बैना हम बिलमारूफ भी, सिर्फ इसलिए कि बाज़ लोगों के हाँ बाज़ ख़ानदानों में सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि अच्छा ये पसंद की शादी कर रहे हैं, तो पसंद की तो बिल्कुल ही नहीं करने देनी, हम चाहे कहीं ऐसी जगह, कहीं और जगह, बेकार जगह कहीं कर देंगे, लेकिन पसंद की जगह पे नहीं करने देंगे, तो वो अना का मसला बन जाता है। तो ऐसी निकाहों के अंदर खुद रुकावट नहीं बनना चाहिए। और यहाँ से ये भी पता चलता है कि निकाह में औरत की रजामंदी होना ज़रूरी है। देखिए ना, इज़ा तरादौ बैनहुम बिलमारूफ, एक हदीस में आता है बेवा का निकाह ना किया जाए जब तक कि वो बोल के ना कहे, और कंवारी का ना किया जाए जब तक इससे इजाज़त ना ले ली जाए। तो लोगों ने पूछा इसे इजाज़त लेने का क्या मतलब है, फरमाया वो खामोश हो जाए यही इसकी इजाज़त है, यानी शर्म से चुप हो जाएगा। तो एक दफ़ा किसी ने आके कहा कि उसका निकाह ज़बरदस्ती कर दिया गया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका निकाह फिस्क कर दिया था, कैंसिल कर दिया था उसका निकाह, ज़बरदस्ती से निकाह नहीं हो सकता जब तक इजाज़त ना हो। और ये इजाज़त कौन लेगा, हदीस में आता है कि कंवारी से उसका बाप इजाज़त लेगा। इसीलिए आपने देखा होगा ना शादियों पर बाप भाई वगैरह जाते हैं और इजाज़त लेते हैं, बाज़ जगहों पे यही चीज़ एक फितना बन जाती है, वो जाके इजाज़त लेते ही नहीं है, पता है कि वो लड़की राज़ी नहीं है, ज़बरदस्ती निकाह कर देंगे। तो ज़बरदस्ती का कोई निकाह नहीं होता। देखिए इस्लाम ने क्या रखा है, औरत की रजामंदी होगी तो निकाह होगा, ठीक है। औरत अगर बाद में नहीं रहना चाहती, कोई वजह है, तो वो खुला ले सकती है, उसके पास भी ऑप्शन है, आदमी के पास तलाक का ऑप्शन है। औरत की रजामंदी के बगैर जबरन ज़बरदस्ती निकाह नहीं किया जा सकता। ज़ालिका युआज़ु बिही मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाही वल यौमिल आखिर, ये नसीहत की जाती है किसके लिए, जो अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत के दिन पे ईमान रखता है, उसके लिए है ये नसीहत। क्योंकि जो अल्लाह पे ईमान ही नहीं रखता, उसने क्या सुनना है उसके ऊपर, कुछ कितना भी आप उसको कहते रहें क्या वो सुनेगा आपकी बात। जिसको आखरत के दिन का खौफ नहीं है वो भी नहीं सुनेगा। इसीलिए आप लोगों के सामने बताते रहिए अहकाम, जूं तक नहीं रहेंगी, इन्होंने करना वही है जो उनके दिमाग में आया। लेकिन जब दिल में ये यकीन होना कि मेरा रब मेरे लिए बेहतरीन फैसला करने वाला है, मैं उसके ऊपर ईमान लाई हुई हूँ, मैंने उसकी बात पर समय ना वाता ना कहना है, मेरे लिए फ़र्ज है कि मैं उसकी दीवी नसीहत को कबूल करूँ, तो फिर इंसान वाकई सुनेगा। और जिसको ये है कि आखरत में मैंने अल्लाह के सामने खड़े होना है, मुझे उस दिन का खौफ है, उसका यकीन है, तो वो नसीहत ज़रूर कबूल करेगा। तो यही लोग नसीहत कबूल करते हैं, वरना तो क्या है, जैसे चिकने घड़े पे पानी पड़ना, चिकने घड़े पे आप पानी डालें ना तो वो फिसल के नीचे गिर जाता है, तो नसीहत का असर भी इसी तरह होता है फिर ऐसे लोगों के ऊपर। आप नसीहत करते रहें उनको नहीं समझ आती। इसलिए देखें आप, जिन लोगों के अंदर जितनी खुदा खौफी, जितना ईमान ज़्यादा होगा ना, उतनी जल्दी वो बात को समझ जाएंगे, दिल पे लेंगे, नसीहत को कबूल करेंगे। ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर, ये बात ज़्यादा पाकीज़ा है तुम्हारे लिए, व अतहर ज़्यादा पाक है। अब अज़का और अतहर में क्या फ़र्क है, अज़का जो है वो दिल की पाकीज़गी है, अतहर जो है वो ज़ाहिरी पाकीज़गी है, यानी इसमें तुम्हारा तज़किया है کہ آپ کسی کا حق اس کو دیں، ناجائز کام نہ کریں، اللہ کے حکموں کے آگے اپنی مرضیوں کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی انسان کی پاکیزگی کا خیال رکھا ہے نا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اگر انسان اس بات کو سمجھ جائے نا تو پھر تو مسئلہ ہی کچھ نہ رہے، یعنی اللہ جانتا ہے، اللہ کو زیادہ پتا ہے، تمہیں نہیں پتا، تمہیں یہ بھی نہیں پتا تمہاری بھلائی کس میں ہے، تمہیں یہ بھی نہیں پتا تمہارے لیے کون سی چیز زیادہ، کون سا قانون زیادہ بہتر ہے، تمہیں نہیں پتا ان قوانین میں تمہارے لیے کتنی خیر ہے، تم ان کو شاید اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے کہ کوئی یہ سمجھتا ہو کہ کوئی ہمارے پر ظلم ہو گیا، ہائے ہمیں تو کچھ ملا نہیں، اسلام نے تو ہمیں یہ پابندی لگا دی، آدمیوں کو یہ دے دیا، ہم بیچاریاں ایسے رہ گئیں۔ نہیں، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کسی پہ نہیں ظلم کرتا۔ اب آگے آ گیا بچوں کا معاملہ۔ اچھا پہلے تو آپ کو میں تھوڑا سا بچوں کے معاملے میں بھی بتا دوں کہ اسلام میں جو اولاد ہوتی ہے نا وہ باپ کی ہوتی ہے، تاکہ آپ کو بات نا ساری پھر انشاءاللہ تعالیٰ آیت پڑھیں گے تو ساری سمجھ آ جائے گی۔ تو اولاد باپ کی ہے، یعنی یہ نہیں کہ ماں کا حق ہی ختم ہو گیا، ماں کا حق ختم نہیں ہوتا، مگر اس کی ذمہ داری باپ کے اوپر ہے، بچوں کی۔ اسلام میں بچے باپ ہیں، اگر ماں سنبھالنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، جائز بات ہے، باپ اس کا خرچہ دے بچوں کا، ماں سنبھال لے، اگر باپ نہیں سنبھال سکتا ماں سنبھال لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر باپ سنبھال سکتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ دایا رکھے، آیا رکھے، جو مرضی رکھے۔ ہاں مگر دودھ پیتا بچہ جو ہے نا اس کو نہ ماں سے جدا کیا جائے، ماں اس کو دودھ پلائے، حتیٰ بلغ شدہ ہو، جب تک کہ وہ سمجھداری کی عمر کا نہ ہو جائے، سمجھداری کی عمر کا ہو جائے تو پھر باپ ان کو لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ والوالدات، اور مائیں، یردعن اولادہن حولین کاملین۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بچوں کے رائٹس کا بھی خیال رکھا کہ مائیں ان کو دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، اولاد ماں کی ہے، ماں نے پیٹ سے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے حقوق کی رکھوالی کرنے والا اللہ ہے۔ ماں بھی اپنے بچے کی اتنی خیر خواہ نہیں ہو سکتی جیسے رب خیر خواہ ہے، کہ فرمایا کہ ان کو دودھ پلاؤ 2 سال، کیونکہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ اس کو دودھ پلانے میں، بچے کو جب ماں دودھ پلاتی ہے تو کتنی بچے کے لیے اس چیز میں، آج تو یہ سائنس بتا رہی ہے نا کہ کتنے فائدے ہیں، اس وقت تو نہیں لوگوں کو ایسے پتا تھا کہ کتنے اس کے فوائد ہیں۔ مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل، لمن اراد ان یتم الرضاع، اس کے لیے جو ارادہ کرے پورا کرنے کی دودھ کی مدت، یہ ہے دودھ پلانے کی پوری مدت 2 سال۔ تو جو کمپلیٹ کرنا چاہے 2 سال تو وہ 2 سال دودھ پلائے وہ ماں، وہ علل مولودی، اور اوپر جس کا بچہ ہے، یعنی والد، ٹھیک ہے، والد جو ہے وہ کیا کرے، رزق ہننا، اس کے اوپر ہے ان عورتوں کا رزق، یعنی ان عورتوں کا کھانا پینا، جو دودھ پلا رہی ہیں نا، اس کا کھانا پینا کس کے ذمے ہے، والد کے۔ وہ کس وقت ہننا، اور لباس ان کا، بالمعروف، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے کے ساتھ، تانے دے کے نہیں، ستا کے نہیں، وہ جو ایکس وائف ہے اس کو یعنی نہ نفقہ دینا، باپ کی ذمہ داری ہے، بچے کے باپ کی، کیونکہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعہا، کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے، تکلیف نہ دی جائے، یہ نہیں ہے کہ باپ کو اتنی تکلیف دے دی کہ وہ جو ہے نا اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ اسے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا لا تدار والدتن بولدہا ولا مولود اللہ بولدہ، نہ تو ماں کو ستایا جائے بچے کی وجہ سے، اس کو نقصان دیا جائے، اس کو تکلیف دی جائے، زبردستی بچہ اسے چھین لیا جبکہ وہ دودھ پلانا چاہتی تھی، یا پھر وہ دودھ نہیں پلانا چاہتی، وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے، اس کو زبردستی بچہ دے رہے، نہیں تم اس کو دودھ پلاؤ، اور نہ ہی والد کو بچے کی وجہ سے ستایا جائے۔ یعنی کئی دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والد کو ستایا جاتا ہے کہ اس سے اتنی ڈیمانڈ کی جاتی جتنی وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، سارا بوجھ اس پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ بھائی پہلے اگر ایک پے اس کی تھی تو وہ ساری لا کے بیوی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا تھا، تو ٹھیک ہے، وہ مثال کے طور پہ ایک آدمی کی 10,000 پے ہے، दस हज़ार वो कमाता है। अब उसमें से अगर वो एक्स वाइफ और वो तो वो मांगती है कि मैं बच्चे को टेक केयर कर रही हूँ, ये इसका मुआवजा अब मुझे 8,000 दो, तो ये कैसे मुमकिन है? क्या उसको अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी? उसके बाद वो शादी भी करेगा, वो अपना भी घर बसाएगा, उसका अपना भी कोई खर्चा होगा, या वो इनका ही खर्चा पूरा करता रहे? तो पहले अगर वो ला के सारा का सारा दे देता था तो पहले एक छत के नीचे भी तो रहते थे, अब वो दो दो घरों का कैसे खर्चा चलाएगा? तो ना वालिद को सताया जाए कि बच्चे हैं भाई अब तो ठीक है, अब तुम बस करो ये पूरा। जोरी कहते हैं अल्लाह ताला ने इसे मना किया है कि माँ उसके बच्चे की वजह से बाप को सताए। ठीक है, जैसे मसलन ये भी कह सकती है कि मैं नहीं बच्चे को दूध पिलाऊंगी, मैं नहीं ये करती, या बच्चे को बाप को ना मिलने दे, इस तरह की सारी चीज़ें हो सकती हैं ना कि माँ बच्चे की वजह से बाप को सताए। इसी तरह आदमी भी करते हैं। وعلى الوارث مثل ذلك, اور اوپر وارث کے ہے ذمہ داری مثل ذلك۔ اب وارث کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ یہ دیکھیں سبحان اللہ کہ اگر باپ فوت ہو جاتا ہے اور ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اب پھر اس کو خرچہ کون دے گا؟ خرچے کی ذمہ داری تو باپ کی تھی نا، وہ فوت ہو گیا، اب کون دے گا؟ وہ بچے کا جو ولی ہے، جو اس کا گارڈین ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ अब वो चाहे चचा हैं, दादा हैं, जो भी हैं, वो पूरी करें। यानी औरत को नानफका वो देंगे। ये बताएं, ये तो हमें लग रहा है पता नहीं कहाँ की दुनिया की बातें हो रही हैं। हमने तो ना आज तक ऐसा कभी देखा, ना अपने माशरों में कभी सुना, ना हमारे इस्लामिक माशरे में तो कहीं पे भी नहीं ऐसा, हमारे मुल्कों में कहीं ऐसा नहीं है। क्या होता है तलाक के बाद? सबको पता है, छीना झपटी, लड़ाई, कैसी कैसी तोहमतें, हर वो तरीका किया जाता है जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचे। उसने हाँ कर दी तो मैंने ना करनी, उसने ना की तो मैंने हाँ करनी, किसी तरह दूसरा ना खुश हो जाए, इसको तो ऐसे ही मैंने अब तकलीफ पहुंचानी के बस, ये तो ठान ली जाती है। अल्लाह ताला फरमा रहे वाला तो दार रहा वाले तुम भी वाला दिया। अब वो बच्चे ऐसी चीज होते हैं ना जो मिडल में है, अब वो उन माँ की भी जान बच्चों में है, बाप की भी जान बच्चों में, तो अब क्या क्या सबसे अच्छा हथियार है दूसरे को सताने के लिए? ये बच्चे, इनके जरिए सताया जाता है। माँ को तकलीफ इन बच्चों के जरिए पहुंचाई जाती, बाप को तकलीफ इन बच्चों के जरिए पहुंचाई जाती। जिसका बस चलता है, जिसका दाव चल गया, वो ज्यादती कर जाता है। यहाँ पे देखें साफ कुरान में लिखा हुआ, ना माँ को तकलीफ दो इन बच्चों की वजह से, ना बाप को तकलीफ दी जाए बच्चों की वजह से। ये नहीं जिसका बस चल रहा है वो अपनी अपनी चलाता जाए। ये याद रखो कि देखो अल्लाह देख रहा है, बार बार देखें, इस आयत के एंड में भी है वत्तकुल्ला वत्तकुल्ला वत्तकुल्ला, तुम अल्लाह से नहीं डरते हो? वाकई ये अल्लाह का डर ना हो तो इंसान किधर किधर डंडी मारता है, ज्यादतियां करता है, दूसरे को सताता है। فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا، اگر دونوں باہم رضامندی سے، دیکھیں اس میں دونوں کی رضامندی چاہیے، دونوں رضامندی سے سوچ لیں کہ ٹھیک ہے ہم دودھ چھڑا لیتے ہیں، مثلاً ہے کہ کوئی عورت اور عورت دودھ پلا دے یا ڈبے کا دودھ پلا دیں گے، وَتَشَاوُرٍ، اور باہم مشورے سے، کنسلٹیشن سے ہو یہ، آپ دیکھ لیں آدمی عورت کے درمیان طلاق ہو چکی ہے، لیکن بچے کے معاملے میں کیا فرمایا؟ ایک دوسرے سے مشورہ کر لو۔ کہاں وہ تو ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہے تو مشورہ کیسے، وہ تو آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں، لیکن کہا گیا نہیں مشورہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں بچے کے خیر خواہ، بچے کا رشتہ نہ ماں سے ٹوٹتا ہے طلاق کے بعد، نہ باپ سے ٹوٹتا ہے، مگر ہمارے ہاں میاں بیوی کے طلاق کے ساتھ ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے بچوں کی بھی باپ سے طلاق ہو گئی، یا اگر باپ کے پاس ہے تو بچوں کی ماں سے طلاق ہو گئی۔ وَتَشَاوُرِن فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، باہم مشورے سے تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پہ۔ اگر آپ نے مشورے کے ساتھ جو دودھ چھڑا بھی لیا نا، دو سال نہیں بھی پلایا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، لیکن باہم مشورے سے ہونا چاہیے۔ یہ نہ ماں اپنی مرضی سے چھڑا سکتی، نہ باپ اپنی مرضی سے زبردستی چھڑا لے۔ तो किसी औरत को तलाक हो या ना हो, ये मामला बाहम रजामंदी से होना चाहिए। आप देखें, दूध छुड़ाने का मामले के लिए अगर ये कहा गया, तो आप ये बताएं जो बाकी मामलात हैं बच्चों के तलाक के बाद, वो क्या बाहम रजामंदी से नहीं होने चाहिए, बाहम मशवरे से नहीं होने चाहिए? उनमें जिसके पास बच्चा होता है वो सोचता है मैं अपनी ही बस चलाऊं, मैं क्यों दूसरे से पूछूं? इतनी सी बात पे भी, दूध छुड़ाने पे भी अगर ये बात है, तो बड़े बड़े फैसलों में फिर कैसे होने चाहिए फैसले? बाहम रजामंदी से, बाहम मशवरे से। लेकिन वो कहाँ आपस में बाहम रजामंद होंगे जिन्होंने ये सोच लिया है कि हमारा एक दूसरे के साथ ऐसा बैर है कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। देख लें, अब यहां से पता चलता है सारी जिम्मेदारी बाप पे डाली जा रही है। अगर औलाद को दूध भी मां पिला रही है तो तब भी बाप पैसे देगा उसको। वह इन अरत तुम्हारा, अगर इरादा तुम कर लो, अंतस्तर दिया औलादकुम, कि तुम दूध पिलवाओ अपनी औलाद को, कहीं और से मतलब दूध पिलवा लो, इस माँ से नहीं पिलवाना, अगर ये तुम लोगों ने फैसला कर लिया, फला जुना अलैकुम, तो तब भी कोई हर्ज नहीं तुम पे। इज़ा सल्लम तुम मा अती तुम बिल मारूफ, जब तुम सपुर्द कर दो, हवाले कर दो, जो तय कर लिया तुमने भले तरीके के साथ, यानी किसी और से भी दूध पिलवाना है ना किसी और से, तो जो भी अच्छे तरीके का, जो डिसेंटली एक डिसेंट पेमेंट होती है, वो तुम उसको अदा कर दो, उस औरत को देनी पड़ेगी। पुराने ज़माने में तो बहुत ये चीज़ें होती थी ना कि माँ के अलावा किसी और औरत से दूध पिलवा दिया जाता था, जैसे डब्बे वगैरह का दूध तो होता नहीं था, तो कोई और दाया दूध पिला देती थी। लेकिन सारी बातों के बाद जो फाइनल बात है वो क्या है? वत्तकुल्ला, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से। वालमू अन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर, जान लो कि जो भी तुम कर रहे हो अल्लाह उसको देखने वाला है। क्या ये काफ़ी नहीं है किसी के सीधा रहने के लिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है? मैं ना किसी पर जुल्म करूँ, ना मैं किसी को नुकसान दूँ, ना मैं किसी के साथ ज़्यादती करूँ। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि ना नुकसान दो और ना नुकसान लो, ना आप दूसरे के साथ जुल्म करो, ना दूसरे के साथ ज़्यादती करो, ना दूसरे के ऊपर कोई ज़बरदस्ती करो, ना तुम खुद जुल्म सहो। लेकिन हम इन सब अहकामात को छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं, जानते ही नहीं है कि हमारे पास ऐसी कोई बात, ऐसे कोई अहकामात हमें कुरान ने दिए। कितनी कितनी बारीक बात बताई गई है ना, एक एक चीज हमारे सामने खोल के बयान की गई है। सूरह तलाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया इसी सारे सिनेरियो के बारे में, जो कि दूध पिलाने का भी, अगर आप लोग उसको भी पढ़ लें तो आपके सामने सारी यही जो आज हमने आयतें पढ़ी हैं यही इंशाल्लाह आ जाएंगी। जैसे मैं सूरह तलाक आयत नंबर 2 से पढ़ती हूँ, बस जब ये औरतें अपनी इद्दत पूरी करने के करीब पहुँच जाएँ तो इन्हें या तो कायदे के मुताबिक अपने एक निकाह में रहने दो, या फिर भले तरीके के साथ इनको अलग कर दो और आपस में दो लोगों को गवाह बना लो, और अल्लाह की रज़ा के लिए ठीक ठीक गवाही दो। यही है जिसकी नसीहत उसे की जाती है जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, और जो अल्लाह से, जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला उसके लिए कोई ना कोई निकलने का रास्ता बना देता है। और फिर आगे जो बात की गई है रदात से मुतल्लिक भी, वो भी सुन लें कि अल्लाह ताला ने फरमाया तुम अपनी ताकत के मुताबिक जहां तुम रहते हो वहां इन तलाक वाली औरतों को रखो और इन्हें तंग करने के लिए तकलीफ ना पहुंचाओ, और अगर वो हमल से हो तो जब तक बच्चा पैदा हो जाए उन्हें खर्च देते रहा करो, यानी अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसकी प्रेगनेंसी में उसका सारा खर्चा बाप के जिम्मे है। फिर अगर तुम्हारे कहने से वही दूध पिलाएं तो तुम इन्हें उनकी उजरत दो, तब भी पेमेंट करनी पड़ेगी, और वहां मुनासिब तौर पर मशवरा कर लिया करो। अब देखो ये किसको कहा जा रहा है, मियाँ बीवी आपस में। और अगर तुम आपस में कश्मकश करो तो इसके कहने से कोई और दूध पिलाएगी, यानी अगर आप किसी एक पॉइंट पे मुत्तफिक ही नहीं हो रहे, औरत कह रही नहीं मुझे तो इतने पैसे चाहिए दूध पिलाने के, आदमी कह रहा मैं तो इतने दे नहीं सकता, तो फिर ठीक है रहने तो कोई और ही पिला देती। कुशादगी वाले को अपनी कुशादगी से खर्च करना चाहिए, यानी अगर हस्बैंड आदमी जो है हस्बैंड तो नहीं अब वो रहा, लेकिन जो बाप है अगर वो रिच है तो वो अपने मुताबिक खर्च करे उसके मुताबिक, और जिस पर उसके रिस्क की तंगी की गई है उसे चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ने उसको दे रखा है उसमें से हस्बे हैसियत खर्च करे। किसी शख्स को भी अल्लाह ताला तकलीफ नहीं देता मगर उतनी जितनी उसको ताकत दे रखी है। यानी अब ये नहीं आप कह सकते जिस पर बेचारा तंगी के अंदर है आप उसको कहें नहीं जी मुझे तो इतना ही चाहिए मैं तो इससे कम में तो लूंगी, नहीं उसके ऊपर उतनी जो जितना अफोर्ड जो कर सकता है उसके ऊपर उतना ही बोझ डाला है, उससे ज्यादा नहीं आप डिमांड कर सकते, उससे ज्यादा डिमांड करके उसको भी ना तंग करो और मुसीबत में ना डालो। अल्लाह अकबर। तो वालमु अल्लाह बिमा तअमलूना बसीर पे बात खत्म होती है कि इस एहसास के साथ अपने मैटर्स को स्ट्रेट कर लो। तुम लोगों को धोखा दे सकते हो, अल्लाह को नहीं दे सकते जो खुद देख रहा है सब मामले को। अल्लाह ताला हमें सीधे रहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमसे वही काम ले जो उसको राजी करने वाले हैं। जी तिलावत चलाइए।
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ